वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चिति। श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद अध्याय श्लोक संख्या 69। देखिए आपकी इच्छा पर है, भागवत से कृष्ण जन्म की कथा और मौसम में राम जन्म की कथा चल रही है। सीजन रामनवमी का है और भागवत का क्रम कृष्ण जन्म का है। क्या सुनना है आपको? हाँ, राम जन्म की कथा। चलिए वंदना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सायुजं येन भूतले
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम।
शिष्य राधा गिरधारी जी की कृपा से दैनिक सत्संग सत्र में आवृत्ति करें। श्लोक की आवृत्ति करना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दसम स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 69। उग्रसेनं च पितरं यदु भोजांधकाधिपं स्वयं निग्रह्य बुभुजे सूरसेनान् महाबलः। उग्रसेनं च पितरं यदु भोजांधकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे सूरसेनान् महाबलः। उग्रसेनं च पितरं यदु भोजांधकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे सूरसेनान् महाबलः। उग्रसेनं च पितरं यदु भोजांधकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे सूरसेनान् महाबलः। उग्रसेनं च पितरं भोजांधकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे सूरसेनान् महाबलः। उग्रसेनं च पितरं यदु भोजांधकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे माता। उग्रसेनं च पितरं यदु भोजांधकाधिपं सूरसेनान् महाबलः। उग्रसेनं च पितरं यदु भोजांधकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे सूरसेनान् महाबलः। उग्रसेनम् उग्रसेन को तथा च तथा पितरम् अपने पिता को यदु यदुवंशी भोज भोजवंशी अंधक अंधकवंशी आधिपम राजा को स्वयं स्वयं निगृह्य दमन करके बुभुजे भोग किया सूरसेनान् सूरसेन कहलाने वाले समस्त राज्य महाबल अत्यंत बलशाली कंस ने अनुवाद उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को जो जदु भोज तथा अंधक वंशों का राजा था बंदी बना लिया और सूरसेन नामक राज्यों का शासन स्वयं चलाने लगा। सूरसेन नामक राज्य के अंतर्गत मथुरा भी सम्मिलित था। और बाकी प्रभुपाद जी इसका जो पर्पट है इस अध्याय के लिए अतिरिक्त टिप्पणी विशाल है, इसलिए मैं इस श्लोक के विषय में थोड़ा सा नियोजन करूँ। कथाक्रम के अनुसार भगवान के माता पिता का विवाह हो चुका है। विवाह मथुरा में ही हुआ। 16 दिन तक बारात मथुरा में रहा और कंस ही स्वयं इस बारात का स्वागताध्यक्ष था। यद्यपि सगी बहन नहीं थी देवकी, लेकिन फिर भी देवकी से इतना स्नेह करता था कि बारात का पूरी व्यवस्था कंस के तरफ से थी। और अपने स्वसुह प्रिय से तिरसया अपनी बहन का प्रिय करने के लिए स्वयं रथ का बागडोर अपने हाथ में रखा, लेकिन उसी समय एक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अरे मूर्ख, तुम जिस देवकी को उसके पति के घर पर पहुंचा रहे हो उसका 8वां पुत्र अस्यास्ते अस्तमो गर्भ हंतायाम बहसे बुध। अब तक किसी देवता की हिम्मत नहीं थी जो कंस को अबुद्ध कह दे, मूर्ख कहे। बहुत बलवान था। इस श्लोक में लिखा गया है कंस कैसा था, बहुत बल वाला था, महाबल। और इसी बल के बल पर इसका विवाह हुआ था। बहुत बड़ा बलवान, शारीरिक बल बहुत था इसमें। इसका प्रमाण उस समय क्षत्रियों का सबसे बड़ा राजा था, क्षत्रिय सम्राट जिसका नाम था जरासंध, मगध का रहने वाला, बिहार, और उसके ही राज शासन में सभी क्षत्रियों का शासन था। तो उस समय जरासंध के पास 2 लड़कियां थी, उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। असुरों के पास केवल यही 2 प्लानिंग रहता है। एक आचार्य ने कहा है कि असुरों के पास मात्र 2 प्लानिंग रहता है, 2 योजना उन मन में रहती है, ये अस्ति। अस्ति माने इतना हो गया है, और प्राप्ति इतना और प्राप्त करना है। तो ये क्षत्रिय सम्राट जरासंध के पास ये दो पुत्रियां थी और इनका विवाह करना चाहता था ये, तो विवाह के लिए एक शर्त रखा था। जरासंध के पास एक हाथी, बहुत विशाल बल वाला हाथी था और उस हाथी का नाम था, जानते हैं ना, भगवान मथुरा में गए तो मारने के लिए रखा था, कुबलया पीड़। कुबलया पीड़ इसलिए उसका नाम था, संस्कृत में कु माने होता है पृथ्वी और बलया माने अपने बल से पृथ्वी, जब वो चलता था तो पृथ्वी को भी कष्ट होता था, इतना भयंकर हाथी, कंप हो जाता था पृथ्वी में जब वह कुबलया पीड़ चलता था, पीड़ा पहुंचाता था। कु माने पृथ्वी को अपने बल से जो पीड़ा पहुंचाए, तो इसका विशेषणात्मक नाम था कुबलया पीड़, इतना बलवान था। अब कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 हाथी का बल एक अकेले उस हाथी में था, जो भी हो। और अपने पुत्रियों के विवाह में जरासंध ने यह शर्त रखा था कि जो इनको अपने वश में करेगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेगा। देश देशांतर के बहुत से राजा आए परंतु कोई भी उस हाथी को अपने वश में नहीं कर सकता, प्राण संकट आ जाता था, इतना बलवान हाथी था। लेकिन कंस जब गया तो उतने विशाल हाथी को वैसे पकड़ लिया जैसे एक बच्चा खरगोश के बच्चे को, चाहे बकरी के बच्चे को पकड़ करके, कान पकड़ कर घुमाने लगे, ऐसे कंस ने पकड़ कर घुमा दिया। तो मैं श्लोक में महाबल शब्द है। एक प्रश्न होता है ना, अपने बाप को बंद कर दिया, पिता को बंद कर दिया जेल में, जो पिता उग्रसेन नाम था। और उग्रसेन क्यों नाम था, क्योंकि उनकी सेना इतनी उग्र थी कि भारतवर्ष में किसी की सेना भी उनसे टक्कर लेने में समर्थ नहीं। उग्र माने जानते हैं ना, भयंकर, और सेना जिनकी सेना बहुत भयंकर थी, परंतु ऐसे उग्रसेन को भी स्वयं निगृह पकड़ करके और अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। ये राजाओं की परंपरा, गद्दी प्राप्त करने के लिए वो किसी भी संबंध का ध्यान नहीं रखते हैं कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारा भाई है, कि ये हमारा मित्र है। राजाओं में प्रायः, खास करके यवन राजाओं में यही चलता है, एक राजा ने दूसरे राजा को मार दिया और गद्दी पर बैठ। कंस ने इस तरह से किया, जो उग्रसेन महाराज बूढ़े हो चुके थे और वसुदेव जी के सबसे बड़े हितैषी थे, तो एक प्रश्न है कि भाई कंस इतना अत्याचार कर रहा है अपने पिता को और भगवान के माता पिता को जेल में बंद कर दिया, तो क्या किसी ने उसको रोका नहीं, तो किसी में ऐसी ताकत थी नहीं कि उसको मना करे कम से कम कि ऐसा मत करो, तुम्हारे पिताजी हैं। तब इसका उत्तर कहते हैं महाबल, इसमें इतना बल था कि किसी ने हिम्मत नहीं की रोकने का, और पिता को जेल में बंद कर दिया। ऐसा प्राय देखा जाता है राजाओं के इतिहास में कि किसी भी संबंध को नहीं देखते हैं, राज्य के लिए, राजा बनने के लिए अपने माता पिता, इसके पीछे में श्लोक आया है कि प्राय राजानो प्रायशः भुवि, इस पृथ्वी पर प्राय जो राजा होते हैं वो राज्य प्राप्त करने के लिए अपने माता को, पिता को, भाई को, मित्रों को, चाचा को, सबका वध कर देते हैं राज्य प्राप्त करने के लिए। और ये कथा सुखदेव गोस्वामी महाराज को सुना रहे हैं, तो लक्ष्य यह भी है कि महाराज अभी अभी जो महाभारत युद्ध हुआ उसमें राज्य प्राप्त करने के लिए कितने लोग मरे। तो ये राज धर्म, राजाओं का इतना कठोर धर्म है कि उसमें कोई संबंध नहीं देखा जाता है। अभी अपने भारतवर्ष के इतिहास में आपने नाम सुना होगा, औरंगजेब बहुत बड़ा राजा हुआ, वह भी ऐसा ही किया था, अपने पिता को शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था। जेल में बंद करके और राजा हो गया, और जेल में भी बंद करके कैसा जेल में बंद किया था कि जिस जेल में राजा हो गया तो उसने ऑर्डर दिया कि हमारे पिता को ऐसे जगह पर रखना और उतना भोजन कम देना और पानी कम देना। उसके पहले इतिहास है कि एक बार ये जेल में बंद करने के बाद मैं अपने पिता से पूछने गया कि आपकी क्या इच्छा है, तो शाहजहां ने कहा कि देखो जीवन भर हम सम्राट रहे हैं, तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया, परंतु हमारी इच्छा पूछ रहे हो तो मेरी इच्छा यही है कि बाहर तो निकालोगे नहीं, तो इसी में दो चार कैदियों को पढ़ाने की ड्यूटी मुझे दे दे, और मैं पूरे देश का सम्राट रहा हूं, इसी में जब एक दो छड़ी कैदियों को मार दूंगा तो हमारा अहंकार बना रहेगा कि अभी भी मैं सम्राट हूं। समझते हैं ना, मतलब दो चार लोगों का शासक हूं ये भावना बनी रहेगी। तो दे दिया, बोले ठीक है इसी में पढ़ाइए आप कैदियों को। तो फिर कुछ दिन के बाद मिलने गया तो देखा कि हमारे पिता तो ये सारा तो बहुत खुश है जेल, अभी भी मैं सम्राट हूं। बोले जेल में बंद करने का कोई अर्थ ही नहीं है, जब ये जेल में भी खुश है तब क्या करना चाहिए। बोले आवश्यकता से कम पानी और आवश्यकता से कम भोजन दिया जाए हमारे पिता को, ऐसे पुत्र। तो कम पानी दिया जाने लगा, कम भोजन दिया जाने लगा, तो 10-15 दिन के बाद फिर गया मिलने के लिए। बोले कैसे हो, तो शाहजहां ने एक जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया, और कहा कि बेटा मुझे बहुत सा ऐसा ऑफर मिल रहा था कि मैं दो बन जाऊं, परंतु मेरा दुर्भाग्य था कि मैं हिंदू नहीं बना। आज मैं यदि हिंदू बन गया होता तो हिंदू लोग अपने मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, मरने के बाद में जल देते हैं, और मैं जानता कि तुम्हारे जैसा नालायक पुत्र पैदा होगा तो मैं ब्रह्मचारी रह गया होता। मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं और तुम जिंदे हमको पानी के बिना तड़पा रहे हो। इस प्रकार के राज्य के लोलुप प्रायः राजाओं का इतिहास है। तख्ता पलट दो, समझे ना, तख्ता, और राजा बन जाओ, उसके लिए किसी का मर्डर करना पड़े, जेल में बंद करना पड़े। सूरसेन प्रदेश का राजा राज्य करने लगा। ये बहुत बड़ा बलवान था। सूरसेन प्रदेश, इसके मूल श्लोक में केवल एक लाइन तात्पर्य है कि सूरसेन नामक राज्यों के अंतर्गत मथुरा भी सम्मिलित था। मथुरा जो था वो सूर सेन राज्य के अंतर्गत था। सूरसेन कौन है? सूरसेन कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र है। और कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी, पहले यादवों की राजधानी थी महिष्मतिपुर, जिसको कहते हैं, आज वर्तमान में उसका नाम जबलपुर है। जबलपुर जानते हैं, इटारसी के आगे जबलपुर है, इलाहाबाद से लगभग 350 किलोमीटर इधर ही। तो प्रायः राजाओं की राजधानी वही थी। सहस्राबाहु अर्जुन, तो वहीं पर उसी समय भगवान परशुराम का अपराध करने के कारण भगवान के एक सत्यावेशावतार हुए परशुराम जी। उन्होंने निर्णय लिया कि धरती से, पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश करना है, और गिन गिन करके सभी पुत्रों को मार दिए। उन सभी पुत्रों में केवल 5 पुत्र बच गए, और वो भी इसलिए बच गए कि वो महिष्मतिपुर जबलपुर छोड़ करके भाग गए। उसी में एक पुत्र थे सूरसेन जी। सूरसेन जी जबलपुर छोड़ करके अपनी राजधानी मथुरा में बनाए। राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भू भुजम। उसी समय से मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, ऐसा अनिर्वचनीय महात्म्य संपन्ना मथुरा, जहां पर नित्य भगवान सन्निहित रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, मथुरा को छोड़ करके कभी जाते नहीं हैं, ऐसे मथुरा मंडल में सूरसेन राज्य बनाया। और उसी सूरसेन के राज्य को बाद में चल करके उग्रसेन जी राजा हुए, और उग्रसेन जी के उस राज्य को, सूरसेन प्रदेश को का राजा अपने पिता को, उग्रसेन को अपने पिता को, जो जदू भोज अंधक इत्यादि राजाओं के वंशों में जो राजा थे, उनको स्वयं निगृह्य अरेस्ट कर लिया, और महाबलवान सूरसेनान सूरसेन प्रदेश को बुभुजे भोग करने लगा। बहुत शक्तिशाली था कंस। और इसके अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्वयं में तो बहुत बड़ा बल था ही, परंतु इसके जो मित्र और संबंधी थे वो एक से एक बलवान थे। अकेले जी अपने आप में बहुत बड़ा बलवान था, महाबल था, लेकिन इसके जो सहयोगी थे वो प्रलंब, बक, चांडूड, हरिष्ट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये बहुत बड़ा बलवान था, कुबलिया पीढ़ हाथी को अपने बस में किया और उसके गिफ्ट में जरासंध ने अपने दोनों पुत्रियों का विवाह इससे किया। 11.5 वर्ष के बाद भगवान जब पुनः मथुरा में पधारे हैं, कंस का वध किया, बहुत बहुत मारकाट चालू हुआ। सबसे पहले उस हाथी को मारा, गेट पर रखा था कि जैसे ही कृष्ण और बलराम आए, स्पेशल ट्रेनिंग दिया था और महावत के लिए करोड़ों रुपए इनाम की योजना थी कि कृष्ण और बलराम को मार दोगे तो तुमको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बेचारा देवताओं से जब सुना कि आत्मा गर्भ मारेगा, उसी समय से सारा प्रयास किया। बहुत बड़ा बड़ा प्लानिंग था, हमारे जी इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, कुबलिया पीढ़ हाथी है, और यदि सबसे बच गया तो मैं हूं, ये कहता था, मैं मार दूंगा। भगवान को मारने के लिए उनके माता पिता को जेल में बंद किया, अपने बाप को जेल में बंद किया, लेकिन भगवान आना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है। महाराज श्री कहते हैं कि करोड़ों लोग लाठी राइफल बंदूक लेकर के पूर्व दिशा की तरफ चले, ये सूरज को नहीं उगने देंगे। आज सूर्योदय नहीं होने देंगे, किसी के बस की बात है? राइफल की गोली कहां जाएगी? उसी तरह भगवान आना चाहते हैं तो एक क्या, अनेकों। कंस भी पूरी महाबलवान है, फिर भी भगवान को आने से रोक नहीं सकता है। और महाबलवान है, कितना बलवान है। भगवान जब उसके आसन पर बैठ करके पहुंच जंप किए, और जंप करके और बाल पकड़ करके ऐसा पटके कि नीचे आ गए, और ऊपर से केवल कूद गए। 11 वर्ष का बच्चा एक कूदा और कंस मर गया, इतना ही बल था। बहुत बड़े बड़े बलवान असुर हुए, देवताओं से अधिक बल है उनमें। हिरण्यकश्यपु का भी शासन ऐसे ही रहा, सारे देवता उसके बस में थे। उसके घर में अग्नि को जलाना नहीं पड़ता था, अपने आप अग्नि प्रज्वलित होकर के और भोजन बनाते थे। झाड़ू लगाने के लिए पवन देवता, और इस तरह से सारे देवताओं को अपने घर में कैद नौकर बना करके रखा। तो भगवान ने दिखाया कि इतना बड़ा बल वाला भी मैं महाबल पर बोल रहा हूँ, भगवान से बलवान। सवई बलम बलिनाम चा परेशम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पूछा किसके बल से इतना बड़ा तुम दृष्टता कर रहे हो? बोले जिनके एक छोटे से बल से तुम सारे पृथ्वी को जीत लिए हो और सारे विश्व ब्रह्मांड में सबके पास जो जो जितना जितना बल है जिस प्रभु से आता है, मैं भी उसी भगवान के बल से। मानस में भी हनुमान जी से पूछा राम ने, कही के बल घाले से बन कीसा, ये हमारे पुत्र अक्षय कुमार को और इन राक्षसों को किसके बल से मार रहे हो? हनुमान जी ने कहा, जिनके एक छोटे से समुद्र बल से एक सीकर, एक छोटा सा बिंदु बल पा करके तुम चर और अचर पर विजय प्राप्त किए हो, मैं भी उनके ही बल से बलवान। इसीलिए भगवान कहते हैं, बलम बलवताम चाहम। संसार में कितने लोगों के पास बल है, उन सब कल मुझसे आता है। किसी के पास भी बल है, असुरों के पास। तो हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवलेश से जीते वो चराचर झारी। चर और अचर संपूर्ण जगत पर जो तुम्हारा आधिपत्य है, जिनके बल से, मैं उनका दास। जिनके प्रिय पत्नी को तुम चोर बन करके हर लाए हो, चोर को बहुत बलवान नहीं कहा जाता है। तुम बलवान भी नहीं हो, चोर हो। और चोर का बल कितना होता है? व्यक्ति सोया है तब तो बहुत बलवान है, लेकिन एक बार खोखी कहते हैं खांसी, यदि एक बार खांस भी दिया ना तो तुरंत घर छोड़ करके भाग जाएगा। बोल, चोर के पास इतना ही बल है। खांसी समझते ना, आती है खांसी, तो वो चोर जान जाएगा कि अरे घर वाला तो जग रहा है, भाग जाना चाहिए। बस बोले, जिनके प्रिय पत्नी को तुम चुरा करके अकेले में लाए हो और अपने को इतना बलवान समझते हो, मैं उन प्रभु का दास। हरि आदिश प्रिय नारी। और जिनके एक लवलेश कर्ण बल को प्राप्त करके तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किए हो, मैं उनके बल से बली। और हनुमान जी ने अपना बल दिखा दिया, देख लो कितना बलवान हो। कहता, अभी भी मैं तुमको छोड़ रहा हूं, रावण ने कहा। तो हनुमान जी कहते, हाँ तुम बहुत दयालु हो, तुम कितने सहनशील हो, इसकी तो मैं सुनो नाम। बाप रे बाप, कितना सहनशीलता है, टॉलरेंट है तुम्हारे अंदर, कि बहन की नाक कान कट गई फिर भी तुम क्षमा कर दिए। पुत्र अक्षय कुमार मार दिया गया फिर भी तुम सह लिए, वास्तव में तुम सहनशील हो। सहने की पराकाष्ठा है, इतना दूसरा कोई नहीं सह सकता है कि किसी के बहन का नाक और कान काट लिया जाए फिर भी सह ले। व्यंग वचन श्री हनुमान जी ने कहा, अशोक वाटिका का उजाड़ना सह लिया, राक्षसों का मारना सह लिया, आप बहुत और अंत में जब सिखाने लगे कि देखो अभी भी समय है, अवसर है, भगवान से द्वेष मत करो, ले जाकर पहुंचा दो, तो कहता है, बाप रे बाप, देखो आज बंदर हमको सिखा रहा है। तो इस तरह से असुरों का अत्याचार बढ़ता है, बहुत बल होता है उनमें, बुद्धि भी बहुत होती है, परंतु उन बल और बुद्धि का उपयोग भगवान और भक्तों के विरोध में करते हैं। उग्रसेन जी जिनका नाम इस श्लोक में आया है, भगवान जिस समय कंस को मारे हैं और कंस को मारने के बाद अपने माता पिता के पास गए हैं, तो वसुदेव और देवकी ने कहा कि मुक्त करने के बाद कहा कि आप उग्रसेन जी को मुक्त कीजिए, तो भगवान उग्रसेन जी को मुक्त किए हैं और मुक्त करके फिर बेटे को मार करके बाप को राजा बनाया है। तो भगवान के कुल में श्राप था कि कृष्ण इस जदु वंश में कोई राजा नहीं होगा, जजाति महाराज ने श्राप दिया था और पूर्व वंश में लोग राजा होंगे क्योंकि पूर्व महाराज ने जजाति महाराज को अपनी जवानी दे दी, इसलिए भगवान राजा तो बन नहीं सकते थे। यहां तक कि द्वारका भी बसाया तो द्वारका में भी राजा उग्रसेन जी रहे और विदुर जी और मैत्रेय जी के उद्धव जी के संवाद में समय आया है कि भगवान अपने सुधर्मा सभा से निकलते थे तो हाथ जोड़कर उग्रसेन जी के सामने खड़े रहते थे और कहते थे कि हे नाथ, इस दास के लिए क्या आज्ञा है। इस तरह से पिता की तरह सम्मान देते थे उग्रसेन जी को। द्वारका में भी यादवों की सेना सबसे, उस समय यादवों की सेना सबसे विशाल सेना थी और उस सेना के राजा थे उग्रसेन जी। तो भगवान इस तरह से उग्रसेन जी को राजा बनाया और प्रतिदिन राज दरबार में भगवान जा करके उग्रसेन जी के सामने हाथ जोड़ कर कहते थे, हे नाथ, दास के लिए क्या आ गया है। ऐसे उग्रसेन जी को कंस बेटा नालायक निकला, बंद कर दिया है। अन्य भी सहयोगी थे, बहुत सारे सहयोगी, और उन सहयोगियों को लेकर के यादवों पर अत्याचार करने लगा। और अत्याचार के मूल कारण कौन थे, कथा आप रोज सुनते हैं ना, नारद जी थे। जैसे ही पहले लड़के को लौटाया, क्या नाम था वो पहले बच्चे का, कीर्तिमंतम प्रथमजम, अब जन्म लिया और लेकर के चल दिए कंस को देने के लिए, तो जल्दी नामकरण संस्कार कर दिया होगा। तो दृष्ट्वा समत्वम तत्सौरे, वह कंस देखा कि बाप रे बाप, एक पिता अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में इतना समभाव रखता है और मेरे जैसे कंस निर्दय कसाई के हाथ में अपने पुत्र को ला करके दे रहा है, तो उसको दया आ गई और कहा कि ले जाओ, प्रतिया तो कुमारोयम न यस्मादस्य मे भयम, लौटा ले जाओ, लौटा ले जाओ। प्रतिया तो क्योंकि अस्मात, इस पहले गर्भ से, पहले पुत्र से हमें कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने आठवें पुत्र से हमारा भय बताया है। तो वास्तव में आकाशवाणी पर भी इसको विश्वास था नहीं। आकाशवाणी पर विश्वास होता तो विश्वास कर लेता कि आठवां गर्भ मारेगा, और मारेगा ऐसा विश्वास कर लेता तो फिर मारेगा माने मारेगा, तब क्या बचने की जरूरत है। परंतु मारेगा तो बच जाएंगे ऐसा भावना से पाप कर रहा था। और उसी समय नारद जी ने देखा कि बाप रे बाप, कंस जैसे दुष्ट के हृदय में भी दया आ गई तो भगवान के आने में देर हो जाएगा। तो भगवान के मनोवतार हैं श्री नारद जी, भगवान के अवतार हैं। प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में नारद जी को भगवान का अवतार माना गया है। नारद जी ने सोचा ये भी दया करने लगे कंस तो भगवान के आने में बहुत विलंब हो जाएगा। तो तत्काल अभी वसुदेव जी घर पे भी नहीं पहुंचे थे बच्चे को लेकर के, और तब तक, और वसुदेव जी जब लौट रहे थे ना तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे, वाह अपने शत्रु के पुत्र, अपने मतलब शत्रु जननी के पुत्र को भी इस तरह से वापस लौटा देना, आप बहुत बड़े दयालु हो, आप महान हो, उदार हो। इस तरह से वसुदेव जी करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं था कि एक कंस का मन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। आठवां गर्भ, आठवें में जब उसको पुत्री मिली और आकाश में उड़ गई तो तुरंत क्षमा मांगने लगा, और उसके बाद तुरंत पहला पुत्र वसुदेव जी का उनके घर में हुआ। और तब तक फिर नारद जी आए हैं, बोले रे तुम जानते हो स्पेशल तुम्हारे लिए आया हूं यहां पर। नारद जी ने कहा स्पेशल वैकुंठ से आ रहा हूं। बोले गुरुदेव क्या सूचना है, क्या समाचार है? बोले विष्णु तुमको मारने के लिए पड़ गया है, और सारे देवता ये तुम्हारे जितने भी हैं ना ये सब जदुवंश में अवतार ले लिए। सर्वे वही देवता प्राय जितने भी हैं ये सब के सब देवता हैं, नंद के संबंधी सब देवता हैं और वसुदेव के जितने भी संबंधी हैं आसपास में सब के सब देवता हैं, और वैकुंठ में मीटिंग करके यहाँ पर आए हैं कि कंस को मारना है, और तुम विष्णु के चाल को नहीं जानते हो, तुम मूर्ख हो, यही बताने आया हूं। तुम जानते हो कितना छलिया है, धोखेबाज है विष्णु? अरे कोई भी एक हो सकता है और एक भी आठ हो सकता है, उसको प्रकट होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है अवतार लेने के लिए। सुने हो ना पत्थर से भी पैदा हो जाता है, वो ब्रह्मा जी के नाक से भी पैदा हो जाता है, और पिछले बार भी तुम काल नियमित थे तो वही विष्णु मारा है, और फिर इस जन्म में भी मारने के लिए प्लानिंग बिल्कुल योजना पूरी हो गई है, और तुम इतनी दया कर रहे हो, इतने भोले भाले हो, तुम्हारी मूर्खता पर हमको हंसी आ रही है, जो सब लोग तुमको मारना चाहते हैं और तुम उन पर दया कर रहे हो, कितने महान हो तुम परंतु मूर्ख हो। नारद जी का तो इतना कहना था, उनकी योजना तो रद्द नहीं हो सकती है ना। कहीं कहीं लोग अर्थ करते हैं ना रद्द, जो सोच लिए वो काम रद्द नहीं हो सकता है, वो तो बना के ही छोड़ते हैं। ये शुद्ध अर्थ नहीं है, शुद्ध अर्थ तो है नारम ददाति सर्वत्र इति नारद, जो सर्वत्र भगवान के भक्ति का दान करते रहते हैं वो नारद है। लेकिन ये एक ऐसे ही मतलब विनोदपूर्ण अर्थ, जो चाहते हैं वो काम रद्द नहीं होता है, ना रद्द होता है। ऐसे श्री नारद जी ने विचार किया, कंस के हृदय में दया आ गई तो प्रभु चाहे अवतार लेने में विलंब करें, इसलिए यथा शीघ्र अवतार हो। नहीं तो एक बात विचार किया जा सकता है, नारद जी जैसे ऋषि और कंस को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, करें कि मारो मारो, गलत किया जो छोड़ दिया, नारद जी के लिए तो ये काम अच्छा नहीं लग रहा है। नारद जी जैसे संत ऋषि दया करने चाहिए, कंस को प्रशंसा करने चाहिए, अच्छा हुआ छोड़ दिया, बहुत सुंदर किया, और ये कह रहे हैं बहुत बड़ी मूर्खता की जो छोड़ दिया। तो इस तरह से कहने के बाद जब नारद जी से सूचना मिली उसको कि ये सारे जदुवंशी देवता हैं, ये सारे नंद बाबा के वंश वाले संबंधी सब देवता हैं और सब मुझे मारने के लिए आए हैं और विष्णु भी आ रहा है देवकी के गर्भ से, और कोई भी आठवां हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कमल पुष्प दिखा करके नारद जी ने कहा कि देखो एक भी आठ हो जाएगा, आठ भी एक हो जाएगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो मत। और इतना सुनना था कि तुरंत अभी वसुदेव जी घर पर भी नहीं पहुंचे थे और इतना कह करके नारद जी गायब हो गए। इसलिए गायब हो गए कि भाई भगवान के माता पिता को ये अब कष्ट देगा तो मैं अपने आंख के सामने देख नहीं सकता, कैसे देखूंगा, परंतु जितना कष्ट देगा प्रभु उतना ही जल्दी अवतार लेंगे, ये लक्ष्य था। और इतना कह करके एवं विनिर्गमे, जैसे ही नारद जी देख लिया होगा कंस की फ्लाइट से अब मथुरा का एरिया छोड़ दिए, और तब तुरंत कहा है बुलाओ लड़के के सहित, पत्नी के सहित बुलाओ, और बुला करके उनको बंद कर दिया और विरोध किया उग्रसेन जी ने कि ये ठीक नहीं है, तब कहा कि आप भी उसी खाते में जाओ, उनको भी जेल में बंद कर दिया। रोकने की ताकत हिम्मत किसी में थी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बलवान था। आगे प्रलंब बक चाणूर अरिष्ट चाणूर मुष्टिक सल तोसल कोवलया पीड़ पूतना अघासुर बकासुर कितने भी सब राक्षस इसके मित्र थे। भोजपुरी में एक कहावत है, एक तभाल और ऊपर से उसके हाथ में कुदाल मिल जाए। भालू ऐसे ही मिट्टी खोदने में उसके नाखून बड़े तेज होते हैं, और ऊपर से फावड़ा मिल जाए तब तो करेला ऐसे ही तीखा होता है, और ऊपर से यदि नीम पर चढ़ जाए, नीम के वृक्ष पर, तब उसकी क्या हालत होगी। अब समझिए वही हालत हो गई कंस की, जैसे किसी एक बंदर को, एक तो ऐसे ही बंदर है और ऊपर से उसको शराब पिला दीजिए, और उसके ऊपर यदि दो चार बिच्छू उसको काट खाए, उसकी क्या हालत होगी। यही हालत हो गई उसकी बिल्कुल, न मृत्यु से डर करके पूरे प्रदेश को, समस्त पृथ्वी से यादवों, पृथ्वी को यादवों से हीन कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, इस तरह का संकल्प लिया नारद जी के जाते ही, और अत्याचार करने लगा सब जगह। उसके अत्याचार से बहुत सारे यादव इधर उधर भाग गए, कोई राजस्थान में भाग गया, कोई हरियाणा में, कोई नेपाल में, कोई बंगाल में, सब वर्णन है कौन कहाँ कहाँ भागे। इस तरह से सारे भक्तों पर जब कष्ट देने लगा तो छह पुत्र के बाद सातवें में बलराम जी आए और आठवें में प्रभु का आविर्भाव होगा। ये कथा आगे आपको श्रवण करने को मिलेगी। यहीं पर विराम कर रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गोविंद सार्वभौम जी कहते हैं कि एक भगाने का मंत्र है इस्कॉन में और एक बुलाने का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहिए तो लोग इधर उधर हो जाएंगे और महाप्रसाद गोविंद कहिए तो सब चले आएंगे। ऐसा एक भगाने का मंत्र है और एक बुलाने का मंत्र है। विनोद में कहते हैं ऐसे तो जो भगवत कथा के से स्नेह रखते हैं प्रेम रखते हैं सब इस तरह से कथा में सोना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति में दो सबसे बाधक तत्व है, एक निंदा। हम लोग प्रतिदिन पहला अपराध है तो ब्लास्फेम द डिवोटीज। डिवोटीज को ब्लास्फेम तो नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा इस जीव से ना हो तो बहुत अच्छा है। निंदा और दूसरा है निद्रा, दो से बचना चाहिए। आपकी सुरक्षा बनी रहेगी, किसी की निंदा मत कीजिए इस जीव से, क्योंकि निंदा करना एक गंदगी है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में दो बहुत सुंदर चीज बनाया, एक निंदक और एक सुअर। सुअर जानते हैं ना, निंदका सुकरास्तैव निर्मितम सफलम हरि। भगवान हरि के विधाता की सृष्टि में ये दो सफल सृष्टि है। किस लिए सफल है? बोले शुद्ध्यन्ति सुकरा ग्रामा। गांवों में जब गंदगी हो जाती है तो सुअर उसको साफ करते हैं। और साधुन शुद्ध्यन्ति निंदका, और भक्तों के जीवन में जब कोई गंदगी कोई दोष आता है तो उसको निंदक लोग साफ करते हैं। कपड़े अपड़े तो ब्रश से साफ किया जाता है ना, लेकिन निंदक लोग दया करके भक्तों के गंदगी को जीभ से चाट चाट करके साफ करते हैं। जीभ से बोलना मतलब भक्तों के दोष को गंदगी को मल को कितनी दया है उनकी। आज तक आपने सुना कि जीभ से कोई गंदगी साफ करता हो? एक गाय ही अपने बच्चे की गंदगी को, जब पैदा होता है बच्चा तो अपने बच्चे की गंदगी को गाय कैसे साफ करती है? जीभ से चाट करके करती है। उसी तरह से भक्तों के जीवन में कदाचित यदि कोई दोष हो कोई अवगुण हो तो ये निंदा करने वाले माँ की तरह अपने जीव से चाट चाट कर साफ करते हैं, उनका उपकार मानना चाहिए। और कबीर दास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको यदि कहीं रहने का जगह नहीं हो तो अपने घर के आंगन में रखना चाहिए कि आते जाते सब देखते रहें। और निद्रा, निद्रा आवश्यक है परंतु समय से जगना चाहिए। ये निद्रा कथा में जो निद्रा आती है ना, वो कुंभकर्ण की पत्नी है। जब कुंभकर्ण को भगवान राम ने मार दिया तो उसने कहा कि सरकार हमारे पति तो चले गए, अब हम कहाँ रहेंगे। आप हमको अपने शरण में रखिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, हम तो वहाँ रहते हैं जहाँ हमारी कथा रहती है, और जो लोग असावधान रहे उनके सिर पर चढ़ जाना। ठीक है प्रभु जी, तो कम से कम ब्रह्मचारियों को स्त्री के संग से बचना चाहिए, है ना? ब्रह्मचारी माने स्त्री से दूर रहना चाहिए। तो निद्रा एक कुंभकर्ण की पत्नी स्त्री है, उसको अपने सिर पर नहीं बैठने देना चाहिए कम। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्रील प्रभुपाद की जय।